ప్రకటి పుత్రమత్ర స్వరూపం స్వరూపమతూరిపురిన్మాధురిం గోష్ఠవాచి రాధాకుండం గిరివరమహో రాధికా మాధువాసం ప్రాప్తో జస్ ప్రతితి కృపయా శ్రీగరు వంశాకల్పతరుభ్య కృపా సింధుభ్యవ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్యనామ్నే గౌరస్తుతే గురవే గౌరచంద్రాయ రాధికాయై తదాలయై కృష్ణాయ కృష్ణ భక్తాయ తద్భక్తాయ నమః అంగశ్యామలిం శటాభిరభితో మందే కృతండీవరం జాడ్డం జాగుదరోచి సంవిదధతం పట్టంబరస్య శ్రియా బృందారణ్య నివాసినం హృది లసద్దామాభిరామోదరం రాధా స్కంద నివేశితో జలభుయం ధ్యాయందాం తవైవాస్మి తవైవాస్మి న జివామి త్వయా వినా ఇతి విజ్ఞేయ రాధే తన్నే మామ చరణ యత కింకరేషు వంశ ఖలు కాకు వాణి నిత్యం పరస్య పురుషస్య శిఖండమౌళి జ్యాపదారసినిధే శుభానుజాయ తతకేలికుంజ భవనాంగన మాళిని ద్వితీయాం సాధన అనర్థ నివృత్తి. భక్తి కే ప్రతికూల తథా హృదయ దౌర్బల్య అసత్ కృష్ణ అపరాధ రూప అనర్థో కా వివరణ ఉపదేశామృత కా పహలా శ్లోక. హమ్ తో సమజతే హై కి భక్తి కే సాధన మే అన్నాభిలాష సీతాశూన్యం ఏ శ్లోక కో స్మరణ రఖకర్ ఉపదేశామృత కే శ్లోకో కా ఔర్ త్రినాదపి శ్లోక కా యది అనుశీలన కియా జాయే తో బహుత్ జల్దీ భక్తి హో సక్తీ హై. ఐ థింక్ దట్ వీ షుడ్ ఆల్వేజ్ లుక్ ఆఫ్టర్ అన్నాభిలాషితాశూన్యం. This is our platform. Platform, no, this is everything. And practicing this Vacho Vedam, Manasah Krodha Vedam. Also, Trina Dapi Sanichana Dishi. Oh, in a moment we can have bhakti. But with us, we ask Gurudev, you should see what should I do. Because they don't follow all these things. If they follow, nothing to ask. Hearing and following these things. So Bhakti Manoj Thakur ji, Vacho Vedam, ye shloka aa rahe hain. Vacho Vedam, Manasah Krodha Vedam. జీవా వేగం ఉదరో ఉపస్థ వేగం ఏతాన్ వేదాన్ జాతి సహేత ధీర సర్వమపి మాం పృథివీ సశిష్య. యది హమ్ లోగ్ అప్నే అప్నే హృదయ సే పూచే తో హృదయ కహేగా जो वाचो वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर और उपस्थ वेगम हम लोग पालन नहीं कर रहे तो सब समस्या ही हल हो जाए, अनर्थ दूर हो जाए। इसलिए इसके लिए चेष्टा करनी चाहिए। जो धीर पुरुष, धीर मैंने क्या, धी मैंने होता है बुद्धि, धी मैंने हृदय, वही बुद्धिमान पुरुष है जो अपनी वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, जीवा के वेग को, उदर के वेग को और जननेन्द्रिय के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है। वह समस्त पृथ्वी का शासन कर सकता है। ऐसे ज्ञानेन्द्रिय व्यक्ति के सभी जन शिष्य बन जाते हैं। शिष्य करने की जरूरत नहीं होती। क्या बोला ओयू अरण्य पर
In this verse, it is explained that someone is jiva, that means who is intelligent and sober. To them, if they control the urge to speak, the urge of the mind, the urge of anger, the urge of the tongue, the belly, and the genitals, then they are qualified to give instructions to everyone in the world.
भजन रहस्य वाक्य वेद, मनोवेद, क्रोध वेद, जिह्वा वेद, उदर वेद, उपस्थ वेद, भजन उद्वेद, बहुत जतने नित्य सब करिबे दमन, निर्जने करिबे राधा कृष्णे और भजन। ये छह वेगों को दूर करने की चेष्टा करनी है, शमन उनको शासन करने की जरूरत है। ये भजन में उद्वेग लाते हैं, बहुत जत्न से इनको दमन करो। कैसे होगा उसके लिए बतलाए, निर्जने करिबे राधा कृष्ण भजन, अकेले रो करके भजन करो। गुरु वैष्णव का अनुगत्य रहेगा किंतु दो आदमी रहने से बातचीत अधिक होगी, इसलिए कुछ ऐसा समय निकालो हरि कथा श्रवण इत्यादि के बाद में जो हम निर्जन में भजन कर सकें। अंततः कुछ करना चाहिए ऐसा, अंततः तो 16 बार या 32 बार 64 बार ये निर्जन का एक रखना चाहिए अपना भजन का, रो रो करके, तब ये देख दूर हो सकते हैं। स्वरूप गोस्वामी कहते हैं कि ये जो प्रस्तुत श्लोक है बाचो वेग वाला, ये भक्ति कांड नहीं है, भक्ति तो नहीं है, है क्या? ये भक्ति विरोधी चीजों को दूर करने का उपदेश है। भक्ति विरोधी, केवल भक्ति विरोधी जो चीजें हैं उनको दूर करने से भी भक्ति नहीं होगी, वो सहायक कुछ होती है, इसलिए इसकी भी आवश्यकता है। ये अनुकल का संकल्प और प्रतिकूल का वर्जन, ये शुद्धा भक्ति के साक्षात अंग नहीं है, बल्कि दोनों भक्ति में अधिकार प्रदान करने वाले शरणागति लक्षण श्रद्धा के अंग है, श्रद्धा का अंग। ऐसा नहीं करने से भी भजन नहीं होगा, और किंतु करने से भी भजन नहीं होगा यदि भजन नहीं करेगा। हरिनाम इत्यादि श्रवण कीर्तन स्मरण ये मुख्य है, यही भक्ति का शुद्ध स्वरूप है, इसलिए वो जरूर होना चाहिए, किंतु उसको शुद्ध बनाने के लिए इसकी जरूरत होती है। वाणी का वेग, मन का, क्रोध का, जीवा का वेग, उदर का वेग, उपस्थ का वेग, ये सब छह वेग जो सहने में समर्थ होता है वो जगत गुरु हो सकता है। इन सब का परस्पर परस्पर अंग और अंगी का संबंध है। यदि आदमी अधिक खाएगा तो उधर उपस्थ का वेग भी होगा, रोग भी होगा। यदि नपे तुले रूप में नहीं खाएगा तो क्या होगा, रोग होगा। सब रोग का प्रधान कारण हम समझते हैं कि इंद्रियों पर दमन न करना है। जितने रोग होते हैं विशेष करके क्रोध से होते हैं, क्रोध से अपना सब कुछ जल जाता है और उल्टा सीधा ज्ञान नहीं रहता, और क्रोध से और इंद्रियां दुर्बल हो जाती है, उस सहने में समर्थ नहीं रख सकता। जो जितना ही क्रोधी होता है उतना ही उसको रोग होता है, इसलिए क्रोध को संभालना चाहिए। काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, काम भी क्रोध भी होता है किसके लिए, कामना के लिए। जो जितना कामुक होगा, जो अधिक कामना वासना करेगा उसको ही अधिक क्रोध होगा, जिसको कोई कामना वासना ही नहीं है उसको क्रोध नहीं होगा। उसी तरह से ये सबका है, ये षड्ऋतु जीव के हृदय में दुर्बलता के कारण होते हैं। क्रोध भी होता है दुर्बलता से, और जितने ही ये सब हैं ये सब दुर्बलता की वजह से कंट्रोल नहीं कर पाते। इसमें से जड़ीय विषय भोगों में आसक्त संसारी जीव में तीन प्रकार के वेद दिखाई पड़ते हैं। क्या क्या? वाणी का वेद, मन का वेद और शरीर का वेद, और इसी के भाग हैं और दूसरे जो तीन हैं, उदर उपस्थित इत्यादि। इन तीनों वेगों की के प्रबल स्रोत में पड़ने से उनका उद्धार होना बड़ा ही कठिन है। वाक का वेद, भक्ति विरोधी जल्पनाओं को, भक्ति विरोधी जितनी जल्पना प्रकल्पना है और भूतज्ञ दूसरों को कष्ट देने वाली चुभने वाली बातों से तात्पर्य है। ऐसा मत बात बोलो जो अपने खराब लग सकता है वो दूसरों को मत कहो, प्राणी मात्र का उद्वेग न हो, तब उत्तम वैष्णव लोग किसी को शासन करते हैं। जैसे नारद जी ने उन दोनों नलकुबर और मनुद्रो को साथ दिया, ये चूहा की नहीं, ये भी तो चूहना है किंतु नहीं उसके कल्याण के लिए। किंतु दूसरे व्यक्ति लोग ऐसी कोई भी बात ना करें जो दूसरों को चूहे, उसका मंगल चिंतन करके जो कहा जाता है वो दूसरी बात, जो अपने लिए खराब लगता है दूसरों को भी, तो यही पर हम लोगों को गड़बड़ी कर देते हैं। जानबूझ करके ऐसी बातें करते हैं कि दूसरों को चूहे। भगवत से वो उपयोगी वचनों को बात बेग मत समझो, भजन से वो उपयोगी जो वचन भगवान की सेवा में लगते हैं उनको नहीं, बल्कि उन्हें बात बेग सहने का फल समझना चाहिए। मन का वेग नाना प्रकार के मनोर्थों को जन्म देता है। विशेष करके ये बात वेग से ही जितने जगत में लड़ाई झगड़े मामला मुकदमा युद्ध बड़े बड़े सब ये बात को कंट्रोल नहीं करने से हुए। महाभारत का युद्ध भी द्रौपदी के एक बात से ही हो गया, अंधा का पुत्र अंधा ही होता, बस महाभारत युद्ध हो गया। और सीता जी वो लक्ष्मण को कहा, ओ तुम हमें अपनी स्त्री बनाना चाहता है, राम मर जाए और तुम हमको लेकर के रहेगा, तो ये कठोर वाणी उनको चुभ गई, इसलिए वो चले गए भाई के यहाँ मृग के पास में। और इसके बाद में रावण चुरा करके ले गया सीता जी को, और महा वो रामायण का ये युद्ध हो गया। उसी तरह से जितने भी चीजें होती हैं, समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम होती है, इस लूली जिह्वा के लिए इसको यदि कंट्रोल कर लिया जाए तो बहुत कुछ समस्या हल। लड़ाई झगड़ा भी इसी सहन यदि करना सीख ले। प्रभुपाद कहते हैं मठवासियों का सहन करना एक प्रधान कार्य है, हम सहन नहीं सकते इसलिए सहना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे बाद दूसरे सहे तो तुम भी तो दूसरे को सहो। इसलिए जब मनोरथ होने लगते हैं तो मनोरथों की पूर्ति नहीं होने पर क्रोध का वेग, अब क्रोध का वेग होने से बुद्धि विनष्ट हो जाती है। क्या कर्तव्य है नहीं कर्तव्य ये नहीं रह जाता, फिर बुद्धि विनाश होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। शरीर के वेद तीन प्रकार के हैं। शरीर का वेद जो होता है तीन, जीवा, उदर और उपस्थ, ये शरीर के तीन वेद हैं। सर्वरस के अंतर्गत किसी भी रस का स्वादन करने की लालसा से उत्तेजित होकर नाना प्रकार के अखाद्य कुकाद्य पदार्थों का भक्षण, मादक द्रव्यों का सेवन जीवा वेद के अंतर्गत है। भक्ति साधक इनसे बहुत दूर रहेगा। भगवान और भक्तों का उचित ग्रहण करो, उसे ये सब दमित हो जाएंगे। यथाचित रूप में भगवत प्रसाद सेवन करने से नियम अनुसार में रसगुल्ला है तो उस पर टूट पड़े ऐसा नहीं, या ठाकुर जी का भोग उतरते हैं उसमें मेघ भाजा है और दूध है उसकी कटोरी लेकर के सबसे पहले घर में घुस गए, ऐसा मत करो। विशेष करके सन्यासियों को इसे बहुत दूर रहना चाहिए, वो वैष्णवों को देखो तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, मन बुद्धि सब ठीक, और जहां ये आरंभ किया परमान्य हुआ तो वो ठाकुर जी के थाला में परमान्य ही नहीं रहा। अब विशेष करके आलू भाजा बड़ा लुभावना, तो ये सबसे खूब सावधान रहो भाई। जीवा लालसा की तृप्ति के लिए हमारे घर में तो भगवान की प्रचुर कृपा है गुरु की, ऐसा रोग दे दिया जी आलू भाजा ही नहीं खा सकते, और रसगुल्ला हमारे लिए खाना मना है कोई भी मीठा, और बतलाओ तो हम खाना भी चाहेंगे तो नहीं खाएंगे। बैगन भाजा सब हमारे लिए मना, तेल का भाजा कोई भी हो, भगवान ने हमारे ऊपर में अद्भुत कृपा की। और यदि कुछ जीवा इधर उधर चल जाएगी तो ऐसा रोग हो जाएगा जो फिर डॉक्टर बुलाने की जरूरत, इसलिए खूब सावधान विचार। इसलिए आप लोग भी इस विषय में ठीक रहेंगे, यदि ऐसा हो तो ये भगवान की कृपा समझना, रोग भी भगवान की कृपा का कारण होता है, ऐसे कैसे नहीं। और संजन से तो रोग होता है किंतु ये भी भगवान की बड़ी कृपा है। हाँ तो जीवा की लालसा यदि हुई तो नाना प्रकार के बुरे रोग भी होते हैं, और कुसंग में फंसने की जरूरत है, कुसंग में फंस सकते हैं। चैतन्य चैतामृत में कहा गया जीवा लालसे जेई इति उति धाय कृष्ण उदर पारायण कृष्ण नहीं पाए। जीवा की जिनकी लालसा होती है वो जीवा के लालस में इधर उधर भगवान को नहीं पाते। भालोनाथ परिवेयर भालोनाथ खाई दे, ये भी महाप्रभु जी ने कहा। अत्यधिक भोजन करने से असुविधाएं होती हैं, अधिक आहार करने वाले व्यक्ति अधिकतर उपस्थ वेग के दास और चरित्रहीन हो जाते हैं। उपस्थ वेग अर्थात स्त्री पुरुष की मिलन की लालसा मन को असत विषयों की ओर खींचती है, इसलिए शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करना अत्यंत आवश्यक है। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। खान पान के साथ में भजन का कुछ संबंध है, इसलिए नियम ये कहा कम भी नहीं अधिक भी नहीं, कम हो कोई बात नहीं, नियम ही कहा। भजन प्रयासी भक्ति के चित्त को भक्ति प्रमण करने के लिए श्रीमद रूप गोस्वामी ने इस श्लोक की अवतारणा की है, इसलिए उन्होंने लिखा है उक्त सर वर्ग की निवृत्ति चेष्टा ही भक्ति साधन है। भक्ति के बिना ये सब चीजों को हम छोड़ नहीं सकते हैं, दमन नहीं कर सकते हैं। जितने ही अधिक भक्ति होगी, श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाप सेवन अर्चन बंधन सेवन, तो अपने आप ये हटेगी, अन्यथा दूसरों अपनी चेष्टा से नहीं हटेगी। यह भक्ति मंदिर में प्रवेश पाने के लिए योग्यता उपलब्धि का सोपान मात्र है, भक्ति साधन नहीं है, किंतु भक्ति पर के महल में जाने के लिए ये सोपान मात्र है। भक्ति तो भगवान की स्वरूप शक्ति की प्रकाश वृत्ति होने के कारण उसका प्रादुर्भूत होने पर वो वेद समस्त सब ही खत्म हो जाए। स्वरूप ये रघुनाथ दास गोस्वामी को देखो, भोग की सारी बातें उनमें हैं, उनको उपलब्ध है, ऐसी कोई भी भोग की बात नहीं है, भोग की सामग्री नहीं है, विषय नहीं है जो उनको प्राप्त नहीं है, किंतु भगवान की कृपा महाप्रभु के मिलने की लालसा हुई और सब अपने आप दूर हो गया। यद्यपि वे परिकर हैं, ये इनको भी देखो, बिल्ल मंगल को, वो तो परिकर नहीं है, साधक हैं, तो भी देखो यहां भगवान की भजन करने की लालसा उठी, अपने आप ये सब चीजें दूर हो गई, भूल गए सदा के लिए। हाँ चलो यू कैन
got so many manoras, so many material desires. when these desires are not attained, this result is growth. And growth means anger. And this anger destroys our mind, mental capacity, and we forget what to do and what not to do. The important point here is that this sound, it creates havoc by its speech, then the next havoc it creates by its taste. It is all those tasty things, but there is junk food. This can be controlled by only prasad. But even in prasad, we have to be very careful. If this prasad comes from the room and we run after that, tasty things in it, right when we take it away in our room and eat, if we take keys from it and then we eat, it will also deliver away. This is not prasad eating activity. So they will thought it, that actually those who are sannyasis and all, they should be very careful. If they will eat selectively and think choosing, prasad also, this will create disease in them. Most of the disease takes place because of our uncontrolled eating. Whenever we see eating, very tasty vegetables, we will take it away and eat it. Aloo bhaja, vegetable of potato, fried potato, is very tasteful to most of the people.
Also begun bhaja.
And begun bhaja.
More.
That is also very tasty. Mostly devotees, they attack on this thing, they take away this thing. And prasad thali, the plate of thali, is raised with only rice and all. Guru is saying, look at his humble that he is just putting himself in heat with a whole view. How he is speaking to us. That Krishna has done a lot of watching on me. How come that he has given me such disease, such problem, that I cannot eat Aloo Bhaja, I cannot eat Rasgulla, and I cannot eat Aloo Bhaja also?
Any delicious food.
Any delicious food, I cannot eat. Even if I desire to eat, I cannot eat. And sometimes, if I just let loose myself and take it, and I have to run after doctor. So, one thing we should note, that of course this uncontrolled eating brings disease in us, but this disease is also in a way mercy of Krishna. And if you have some trouble and disease, that it makes you control your eating, you will think that it is mercy of Krishna. Therefore, it is said in Ketan Charitamrita, we should not eat a bhalo, we should not eat very delicious things, and we should also control our bearing clothes and all.
And the rest you have to. Pratyahar, prayaschascha, prajalpo niyamagraha, janasangascha, laulyancha, sargar bhakti vinasyati. अधिक आहार या अधिक किसी प्रकार का संचय, कोई प्रकार का भी भक्ति प्रतिकूल कोई चेष्टा, व्यर्थ आला, नियम आग्रह, असत्संग लौल्य, बुरे विचारों को ग्रहण करना, ये सब चित्त की चंचलता है। ये छह भगों से दोषों से भक्ति विनष्ट हो जाती है, इसलिए दूर रहना चाहिए। अधिक आहार, किसी भी विषय का अधिक सेवन करना नहीं चाहिए। बस एक ही चीज है जिसका अधिक सेवन कर सकते हैं और नहीं। क्या भक्ति का सेवन करो और मत सेवन करो संसारिक चीजों का संग्रह मत करो। अर्थ इत्यादि प्रतिष्ठा और जितनी भी चीजें हैं विषय उनका सेवन मत करो संग्रह मत करो, ये अत्याहार है। भक्ति और सत्संग जितना कर सको ये लाभदायक। गृह त्यागी भक्तों के लिए कुछ संशय कुछ भी संशय करना निषिद्ध है। गृह वैष्णव के लिए निर्वाह उपयोगी संग्रह की आवश्यकता है। गृहस्थ लोग ये कुछ कर सकते हैं संग्रह। डोंट कीप एनीथिंग बियॉन्ड योर वर्क एंड नेसेसिटी। डोंट इंक्रीज योर नेसेसिटी, डोंट इंक्रीज। इसी का नाम तो वैराग्य है या द्वेष है। अपने आवश्यकताओं का संकोच करना इसी को कहते हैं द्वेष। जितने भी संग्रह हो उनसे दूर रहे। गृह वैष्णव गृह कैन हैव समथिंग। Those who are coming from England, Americans flying here, going there, with passport and visa, they need something to eat. But for Indians, not so much. Grihastha log utna hi rakhte hain jitna zarurat hai. Adhik sanchay karenge, bas gadbad ho jayega. Bhajan ki paas vyaktiyon ke liye vishay logon ki bhati sangrah karna uchit nahi hai. भक्ति विरोधी चेष्टा अथवा विषयों को भोगने की चेष्टा यही प्रयास है। प्रयास इसी को कहते हैं प्रयास। प्रजल पर समय को अनर्थक ग्राम्य बातों में मत बिताओ। डोंट डू चैटर पैटर व्हेन यू मीट एस्पेशली वी डू आउट ट्राई टू एडवाइज। भगवत सेवा रूप उच्चतम अधिकार की प्राप्ति के लिए चेष्टा न कर निम्नतम स्वर्ग आदि विषयों में आग्रह और भक्ति पोषक नियमों के प्रति उदासीन ही नियम आग्रह। नियम आग्रह अत्यंत आग्रह जिसे भक्ति नष्ट हो जाए। अनियम आग्रह हरिनाम जितना रोज करेंगे ये आग्रह नहीं है। हम हरि कथा जरूर सुनेंगे इसके लिए नियम आग्रह, ये तो ठीक है। वट इज नियमाग्रह यो वट इज नियमाग्रह नियमाग्रह भोजते चयु और सर्जिधम की लक्षण। विशुद्ध भक्तों को उनकी आवश्यकता अनुसार किसी वस्तु को देना। विशुद्ध भक्तों के द्वारा दी हुई प्रसाद के स्वरूप में उस वस्तु को ग्रहण करना। भजन के संबंध में अपनी बातें भक्तों के निकट में कहना और वैसे ही रहस्यमय गुप्त बातों को उनसे पूछना। भक्तों के द्वारा प्रसाद को प्रीतिपूर्वक भोजन करना और भक्तों को भोजन करना, ये 6 प्रकार के प्रीति के लक्षण हैं। आदान प्रदान प्रीति गुढ़ आलापन आहार भोजन क्षय संगे लक्षण साधु सहित संगे भक्ति वृद्धि है अभक्त असत संगे भक्ति है क्षय। इस श्लोक में भक्ति पोषक सब प्रीति विशुद्ध भक्त से प्रीति रखना चाहिए। कोई अतिथि आ जाए कर्तव्य के लिए उसे दे दो। मायावादी आया तुम्हारे घर में भिक्षा के लिए, उसे भगाओ मत, उसे दे दो, कर्तव्य के लिए दो, प्रीति के साथ में मत दो। भक्तों को जो कुछ देना है वो प्रीति के सहित में दो। यदि बिना किसी उद्भागत का एक श्लोक है, जानबूझ करके नभी हो और असत्संग हो तो उसका फल मिलता है। वैसे ही शुद्ध भक्तों का संग यदि अनजान में भी हो जाएगा तभी तुम्हारा कल्याण होगा, और जानबूझ करके किया जाए साधु संग तो फिर तो बात ही क्या है। इसलिए कहते हैं यदि कोई भिखारी आ जाए और तुम्हारे पास में तुम गृहस्थ है तो उसे कुछ दे दो। यहां तक कि मायावादी भी हो तभी दे दो। प्रभुपाद के जीवन चरित्र में हम अपने गुरु जी के जीवन चरित्र में ऐसा देखा, ऐसा नहीं जैसे मायावादी इसको यहां से भगा। प्रभुपाद एक बार बिगड़ गए थे, उनको ऐसे ही कोई मायावादी आया था, प्रभुपाद ने उसे बुला करके और उनको खिलाया या उनको दिया, इससे भक्ति नहीं हानि होगी। ये कर्तव्य के लिए दे, किंतु प्रीति के साथ में देने से गड़बड़ हो जाए। प्रीति के साथ में देना है तो किसको दो? भगवत। तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा पिताजी है, वो भजन नहीं करता तो क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? भजन तो नहीं करता है तुम उनको छेड़ो मत, अपना तुम भजन करो, उनसे लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। वहां पर सहो प्रहलाद महाराज जी जैसे सहो। व्यवहारिक जो है वो परमार्थी को छो, परमार्थी उनसे मत करो। परमार्थी करो किससे? एकमात्र शुद्ध भक्त यदि हो तो जाति आशीष करो। उनसे तटस्थ के रूप में तटस्थ रहकर किसी पूर्वक नहीं। भगवत भक्तों के संग से भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, किंतु सतर्कता पूर्वक केवल विशुद्ध भक्तों का ही संग करो। संगकर प्रति के साथ में करो और दूसरों के लिए कर्तव्य के लिए बस करो। जीविका निर्वाह से संबंधित बस विषयी मोक्षकामी अन्याभिलाषी व्यक्तियों का संग और परस्पर आदान प्रदान प्रति पूर्वक मत करो। उनके संग के दोष ही भक्ति की हानि होती है। भक्ति संबंधी गोपनीय विषय भी उनके निकट श्रवण नहीं करना चाहिए। उनका स्पर्श किया हुआ अन्न भी ग्रहण मत करो। विषय अन्न खाई ले मलिन है मन, मलिन मन हैले नहे कृष्ण स्मर। चैतन्य चैतामृत में ऐसा कहा। स्वजाति स्निग्ध भक्तों के साथ परस्पर किसी द्वारा भक्ति की वृद्धि होती है, अन्य के द्वारा नहीं होती। और बतला रहे हैं निष्किंचनश्च भगवत भजनोन्मुखश्च पारंपरम जिग्मिषोर भवसागरश्च संदर्शनम विषयीनाम अथ जोषितांच हाहंत हंत विषभक्खनो अप्रसादु। श्रीमद्भागवत में चैतन्य चैतन्योदय का ये श्लोक है। चैतन्य महाप्रभु बड़े खेत से कहते हैं, निश्चिंजन भगवत भजन में तत्पर भाव सागर से पार जाने के लिए यदि इच्छुक कोई व्यक्ति है, भगवत भजन में तत्पर रहना चाहता है, निश्चिंजन है, भाव सागर से पार जाने के लिए इच्छुक व्यक्ति के लिए विषय योग और स्त्रियों कामुक भाव से स्त्रियों के प्रति दर्शन करने वाले लोगों का संग करना बीच भक्षण के अपेक्षा भी हुआ है। निश्चिंचन भजन उन्मुख ये जन भवसिंधु उत्तीर्ण है ते जार मन विषय मिलिन मलिन आर्जोषित सम्मिलन विषपान अपेक्षा तार वृद्ध संघटन। यदि प्रणय रात के जाओ गौरांग ने छोटो हरिदास तथा ठाकुर जी अपने भक्तों को निमित्त बनाकर दोष नहीं जाने पर भी और उनको किस प्रकार से त्याग दिया, ये हम लोगों के लिए शिक्षा है। यदि महाप्रभु से प्रण रखना हो तो इससे बचने की चेष्टा हो। अंग्रेजी यो 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 नो वन
devotional activity. How to affiliate with them? very important thing has been told in this regard. We should, with our love and affection, give the thing, give to high advanced devotees. And whenever they give us prasad, we should accept it very happily. Gurudev is telling here that it does not mean that we should not give anything to those who are not devotees. If anyone comes to your house, he may be mayavadi also. We should not reject him. It is the idea established by the Prabhupada. But we should understand how to treat two types of persons. One who are non-devotees and one those who are devotees. Feeding, giving food and other things to devotees, first thing, with love and affection. But to those who are non-devotees and mayavadi, we should treat them as our duty only. If in our house, our wife, our father, our mother, some or other, they are not devotees, what will you do? You cannot reject them. Here, your tolerance is tested. We should show our tolerance. We should treat them. From the external and material contact we should have with them, but we should not have attachment with them. The exchange of gifts and everything must be conducted with devotees only. They should be our target, and we should always try to associate with the jati artists with devotees. And we should remain neutral with others. Gurudev is saying that there, one instance took place that one mayavadi came to us, and Srila Prabhupada asked his disciples to give him prasad.
No, no, they rejected first.
Devotees first rejected them, no, he is mayavadi, we should not treat him at all. But Prabhupada was became angry and he called him and he gave him prasad. This should be our way to treat those who are not devotees and even mayavadi. One thing is that we should be very much careful when having our association with devotees. Why? Because we have to select that who is real advanced devotees or jati artistic. All different type of devotees should be our ideals